ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے, علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے, جو کچھ سیکھے سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کے نام ماشاء اللہ الحمد للہ کا کرم فضل و کرم. پڑھتے ہیں ناظرین کی ویڈیو سوالات کی طرف.
میرا نام محمد خرم اتاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو مال ہم مہنگے داموں میں خریدتے ہیں وہ اگر دام گر جائیں اور ہم مہنگا ہی بیچیں تو وہ کیسا ہے, اور جو مال ہم سستے داموں میں خریدتے ہیں اور اس کی اگر ریٹ بڑھ جائے تو وہ مہنگے داموں میں بیچنا کیسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی ایسا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر کے کئی دفعہ جب مال ہول سیلر یا دکان والا خریدتا ہے تو وہ زیادہ تعداد میں خریدتا ہے اور اس مال کے جو ہے وہ بیچنے سے پہلے ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. خیر اعتبار سے جب آپ نے کوئی مال جو ہے وہ خرید لیا ہے تو آپ اس کے مالک ہو گئے, اب آپ آگے اسے جو ہے وہ بغیر جھوٹ اور دھوکہ کے کسی بھی قیمت کے اوپر بیچ سکتے ہیں, جبکہ قانونی اعتبار سے کوئی پابندی فکس ریٹ کے اوپر بیچنے کی نہ ہو.
صحیح.
تو لہٰذا اگر آپ نے کم داموں میں خریدا ہوا ہے اور ریٹ بڑھ گئے ہیں تو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے کہ نہیں بھائی یہ تو جو ہے وہ نیا مال ہے حالانکہ آپ کے پاس پرانا مال پڑا ہوا
مال پہلے کا,
تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو نئے ریٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مہنگا خریدا ہے اور اب مارکیٹ سستی ہو گئی تو اگر اب بھی آپ مہنگا بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں میں, پہلی والی صورت میں بھی اور اس میں بھی, بات وہی ہے کہ بعد والی جو صورت ہے اس کے اندر تو کاروباری اعتبار سے آپ کا نقصان ہوگا کہ لوگ آپ سے خریدنے نہیں آئیں گے, دوسری دکان پہ جائیں گے جہاں انہیں سستا مال مل رہا ہوگا.
یعنی جہاں یہ خود عام
انہوں نے مہنگا خریدا ہے اور اب یہ آگے مہنگا ہی بیچ رہے ہیں حالانکہ مارکیٹ میں سستا ہو چکا ہے وہ مال.
ٹھیک ہے,
تو ایسی صورت کے اندر تو اپنا کسٹمر توڑنے والی بات ہے. اور ایک صورت یہ کہ آپ نے سستا خریدا ہوا ہے اور اب مال پیچھے سے مہنگا ہو گیا ہے, تو اس صورت کے اندر مسلمان کی خیرخواہی کے اگر پیش نظر بات کریں تو اس میں مناسب نفع رکھ کر جو ہے وہ بیچنا چاہیے. پرانی قیمت پر بھی بیچ سکتے ہیں, نئی پر بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یا تو پرانی پر ہی بیچیں کہ آپ کو تو نفع اتنا ہی مل رہا ہے اس کے اندر, یا کچھ پیسے بڑھا دیں اور کچھ جو ہے وہ نفع سامنے والے مسلمان کی طرف بھی جو ہے وہ منتقل کر دیں, تو یوں کیا جا سکتا ہے. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ آپ جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ دیں.
ٹھیک,
آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ نہیں جناب یہ پرانا مال ہے یا یہ نیا مال ہے, یا بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر گورنمنٹ کی جانب سے پابندی ہوتی ہے کہ بھائی ان ریٹ کی پاسداری لازم ہے, اگر آپ اس کے برخلاف کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کی پکڑ ہوتی ہے. اور یہ ریٹ کی پاسداری انڈرسٹوڈ سی بات ہے اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ آپ مہنگا بیچ رہے ہوں, سستا بیچنے کے اوپر تو کوئی کلام جو ہے وہ نہیں
کوئی بھی نہیں گیا.
تو اب آپ اگر ایسی صورت حال کے اندر کہ ریٹ لسٹ آئی ہوئی اور آپ اس سے زیادہ بیچ رہے ہیں تو اب آپ اگر پکڑے گئے یا آپ کے خلاف کمپلین ہوئی تو آپ جھوٹ بولیں گے یا جو ہے وہ رشوت دیں گے یا آپ پر جرمانہ لگے گا یا جو ہے وہ آپ جیل وغیرہ جائیں گے. تو ان تمام ہی باتوں کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے, تو لہٰذا جہاں قانونی پابندیاں ہیں وہاں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان قانونی پابندیوں کی پاسداری بھی مسلمان پر لازم ہے.
اچھا, یہ بھی مخصوص ہوتا ہے یعنی چند ایسے آئٹم جو کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں یا اوور آل بھی ہو سکتے ہیں, ادویات کے اندر بھی ہوتا ہے اور نہیں نہیں فصلیں جب ہوتی ہیں تو اس کے اندر کھاد یا دیگر چیزوں کے اندر بھی ریٹ فکس کیے جاتے ہیں کسانوں کے پیش نظر کہ یہ ان کے لیے ہیں، اور جس جس بھی شعبے کے اندر اس طرح ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ حکومت کی طرف سے ہے تو پھر اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، اسی میں ہی عافیت ہے اور آپ کا بھی اس میں زیادہ ایک طرح کا دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور ذلت سے بھی بچت ہوگی۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔
یہ اثر کی جو نماز ہے اس میں آخری دو رکعت اگر فرض سے رہ جائے امام سے، تو آخری دو رکعتوں میں اگر کوئی بندہ تلاوت کر جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
آخری دو رکعتیں فرض کی امام سے رہ گئیں،
امام سے رہ گئیں یعنی کہ مقتدی شاید جو ہے وہ
مقتدی ہیں، مطلب دو رکعت بعد میں یہ ملے ہیں،
جی تو اب یہ شخص مسبوق ہے، اب یہ جب امام کے ساتھ جب یہ شامل ہوا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اب امام کے پیچھے تو یہ تلاوت نہیں کرے گا، یہ رکعت ویسے بھی تلاوت والی نہیں ہے اور امام کے پیچھے ویسے بھی اس کو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے بھولے سے امام کے پیچھے تلاوت کر لی تو ایسی صورت میں کوئی گناہ یا سجدہ سہو یا واجب الادا نماز نہیں ہے، کہ امام کے پیچھے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو امام اسے کافی ہوتا ہے۔ اب امام کے پیچھے اس نے تلاوت نہیں کی، یا اگر خدا نخواستہ کر بھی لی تو بہرحال جب یہ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اصل میں تلاوت اس کو انہی دو رکعت کے اندر جو ہے وہ کرنی ہوگی۔
یعنی یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز کی یہ آخری دو رکعتیں
جی،
قرات کے اعتبار سے یہ آخری دو رکعتیں اس صورت میں، یہ ان کی پہلی دو رکعتیں تو اس کا ایک فارمولہ ناظرین یہی یاد رکھ لینا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کو یہ مسائل یاد ہونے چاہیے، امام کی جو رکعت آپ سے چھوٹ گئی ہے یعنی امام نے پہلے پڑھ لی اور آپ بعد میں شامل ہوئے ہیں تو آپ اس کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھری رکعت ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ سورہ کوئی بھی سورت ملائی جاتی ہے اور پہلی رکعت اگر چھوٹی ہے تو اب آپ جب اپنی سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت شروع کریں گے تو پھر اس کو ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ثنا چکے پہلے عموماً امام کی قرات شروع ہو چکی تو اب ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب ثنا رہے گی یہ، تو وہ جب آپ اپنی رکعت شروع کریں گے تو اس سے پہلے ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، والناس، جو بھی آپ سورت پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ پلس سورت یہ بھری ہوئی یعنی رکعتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح دو رکعتیں اگر آپ کی رہ چکی تو آپ دونوں کے اندر آپ قرات کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ میری اب یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، بے شک وہ تیسری اور چوتھی ہے لیکن تلاوت اور قرات کے اعتبار سے وہ آپ کی پہلی اور دوسری، جو بھی آپ کی چھوٹ چکی ہے جماعت سے رہ چکے ہیں تو ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ تو شامل ہوا لیکن اس کی کچھ رکعتیں فوت ہو چکی ہیں، امام نے ایک یا چند رکعتیں پہلے پڑھ لی ہیں اب یہ شامل ہوا، تو ایسے مقتدی کو مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے، اور جو شروع سے ہی عام مقتدی نارمل جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو پوری جماعت جنہیں حاصل ہو گئی، تو مسبوق یعنی جس کی رکعتیں کچھ رہ جائیں تو وہ جو جس کیفیت میں رہیں ان کو ویسے ہی اس کو ادا کرنی، اگر بھری والی رکعتیں رہی ہیں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ سب ملائیں، اور اگر کسی کی بالفرض چاروں ہی رہ گئیں التحیات میں ہی ملا ہے تو اب جیسے چار فرض ادا کیے جاتے ہیں ان کو وہ اس انداز سے وہ ادا کریں گے، ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے۔ اچھا ویسے بھی اگر ہم بات کریں کہ جماعت سے رہ گی نماز تو اب اگر چاروں رکعتوں میں کسی نے اثر کی سورہ فاتحہ اور پلس سورت ملائی تو کیا ہوگا؟
منفرد شخص سے جیسے اور اس کی جماعت سے رہ گئی، وہ اپنی انفرادی طور پر جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اگر وہ فرضوں کی، اچھا یہ صرف اثر نہیں کسی بھی جو ہے وہ چار رکعت
کسی بھی نماز، اسی طرح بہنیں ہماری جو سن رہی ہیں
پڑھ رہی ہیں
گھر میں پڑھ،
اگر وہ آخری جو دو رکعتیں فرض کی ہیں عمومی طور پر تو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر سورت بھی ساتھ ملا لیتی ہیں تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ منفرد جو علیحدہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے لیے افضل ہے یہ عمل کہ وہ ساتھ میں سورت ملا لے
یہ لوگ سمجھیں گے
لازم نہیں ہوگا بلکہ جو ہے وہ ملا سکتے ہیں اور ملانا افضل ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
لکڑی والی جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
لکڑی والی جائے نماز ایک ہے کہ آپ تخت کے اعتبار سے اسے جو ہے وہ جائے نماز
اسی طرح ہی ہوگا
تو اس پر بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اور اگر واقعی فولڈنگ والی اگر لکڑی کی بھی کوئی جائے نماز بنی ہو तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, बिल्कुल नमाज अदा कर सकते।
फोल्डिंग वाली कैसे होगी, लकड़ी वाली झंडा इनवाज जो कोई वो तख्ता नुमा होगा टकटक करता हो,
छोटे जो,
लेकिन आप अगर वो
ब्लाइंड्स के होते हैं तो इस तरह ब्लाइंड्स वाली सूरत के अंदर भी कई चीजें लकड़ी की इस तरह बनती है,
ठीक है, लेकिन उसका बिल्कुल मुस्तकिल जैसे ये तख्त रखा हुआ है तो हाँ, पूरा जमा हुआ है ना,
छोटी सी बात नहीं है। वो अगर वो जाए नमाज किसी ने बिछा ली बेड के ऊपर,
हाँ तो
अंडरस्टूड सी बात है कि जो है वो नमाज नहीं होगी, वो जमीन के ऊपर ही किसी जगह पर जो है मुस्तकिलन जो है वो जमा हुआ हो तो ही जो है वो उसके ऊपर नमाज अदा कर सकते,
ठीक है। पंजाब में एक होता है या सिंध में भी कई जगहों पर होगा, कराची में वैसे ही आमतौर पर नॉर्मल मकान फ्लैट वगैरह तो ये वैसे ही छोटे होते हैं, तो इसमें शायद एहतमाम इस तरह नहीं होता होगा। कई बड़े घरों में तो मैंने देखा बकायदा जो सलात रूम बना हुआ है नमाज का रूम, बहुत अच्छी बात है। अगर घर के अंदर इस तरह की जिसे हम मस्जिद बैत कहें तो घर के अंदर ये एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको वसत दी है तो आप जब सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कभी क्या कभार कोई मेहमान आएगा तो वो कहाँ बैठेगा, अच्छा वो यहाँ बैठना है, ड्राइंग रूम है कहाँ, यहाँ बैठकर आपने कोई कारोबारी मीटिंग करनी है, यहाँ आपने अच्छा अचानक दो तीन तरह के मेहमान आ गए जो बीवी की तरफ वाले भी कुछ आ गए तो बच्चा है उसके उसके ससुराल की तरफ से कुछ आ गए, तो ऐसे भी एहतमाम लोग करते हैं जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, बड़े वसी मकान बनाते हैं। तो आपके घर के अंदर एक नमाज का भी कमरा होना चाहिए ताकि आपके आने वाली नस्ल आपके बच्चों को इस तरह की ये फिक्र सोच पहले से ही मिले कि हमारे घर के अंदर एक नमाजों वाला माहौल है और ये सब चीजें तो ये अच्छी बात है। कपिल साहब हम देखते हैं पंजाब के अंदर, मेरा तो मैंने खुद कई जगहों पे देखा है कि वो तख्त बकायदा पहले पहले बनाते थे और घर के अंदर बड़ी अम्मा हैं माएँ हैं इस तरह ये बोले तख्त पर अपने बैठ के, उनकी दो वजूहत होती हैं, एक कि नीचे बच्चे बुच्चे इधर उधर खेल खूल रहे होते हैं तो वो उससे ही बच बचा के ऊपर तस्बीह पढ़ रही हैं और अपना आराम से कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी किसी तरह की बेअदबी से भी महफूज रहते हैं, तो वो तख्त पूरा वो बना होता तो उस पर ही नमाज और उस पर ही वो सारे, तो इसमें कोई किसी तरह का
हर्ज नहीं है। अलबत्ता तख्त हो या जो है वो जमीन पर पढ़ रहे हैं तो जिन नमाजों में कयाम फर्ज है उसमें फिर खड़े होकर ही पढ़नी होगी, तो तख्त के ऊपर भी फिर खड़े होकर ही वो नमाजें अदा करनी होंगी। हाँ, सिवाय ये कि वो शख्स जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, वो खड़े होने पर कादिर नहीं है, शरई एतबार से उसे बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त है तो वो बैठ कर भी जो है वो अदा कर सकते हैं, जिस तरह जमीन पर बैठ कर पढ़ सकता है तो इसी तरह उस तख्त पर भी बैठ कर पढ़ सकता है। लेकिन अगर खड़ा होने पर कादिर है तो इस वजह से कि जनाब जमीन पर तो हम खड़े होते हैं तो ईजिली खड़े हो जाते हैं, तख्त वैसे ही ऊंचाई के ऊपर है उसके ऊपर भी मजीद खड़े होंगे तो हो सकता है कि किसी को जो है वो अंदेशा हो, तो उससे कयाम साकित नहीं होगा, बहरहाल जो है वो खड़े होकर ही पढ़ना होगा
उसी तरह ही नमाज
के तरीके से नमाज,
जिसके लिए जो उजर है
जी
वो जमीन पर भी उजर अगर उसके लिए वही है तो फिर एक अलग बात,
अलग बात,
ठीक है जी।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इनको वाला झाड़ू जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता उसे नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसकी बददुआ होती है, क्या ये बात सच है?
झाड़ू की भी बददुआ होती है?
इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, लोगों में वैसे ही जो है वो अफवाहें फैल जाती हैं, तो शरई एतबार से उसे जो है वो जलाने में हरज नहीं है, वो लकड़ी है या जो है वो तिनके हैं तो उनको बिल्कुल जो है वो जब वो ज़ाया हो गए या काबिल इस्तेमाल झाड़ू के नहीं रहे तो उसे जो है वो जलाने के काम में लाया जा सकता है, कोई हरज नहीं।
ठीक है मजीद
सवाल ये था कि सजदे की हालत में उंगलियों का पेट लगना ये मर्दों के लिए भी लाजिम है या औरतों के लिए भी है?
जी,
सजदे की हालत के अंदर जो उंगलियों का पेट लगना जो है वो एक उंगली का फर्ज और दोनों पैरों की अक्सर उंगलियों का लगना वाजिब है और दसों उंगलियों का लगना सुन्नत है, ये मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है, क्योंकि औरतों के सजदे की कैफियत ही जो है वो जुदा है, वो मुकम्मल पर्दे पर मुश्तमिल है तो लिहाजा औरतों के लिए वो लाजिम नहीं है,
वो अपनी आसानी के पेश नज़र चाहे दाएं जानिब या
दाएं जानिब या पीछे जानिब जिस तरफ आसानी हो उस तरफ पांव निकाल कर नमाज अदा कर सकती
है। ठीक है, कई नमाज के अहकाम हैं जो मर्द और औरतों के अंदर फर्क उनका बयान किया गया है, जैसे खवातीन जैसे कयाम के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मर्दों के लिए यही है कि अपने हाथ उठाएंगे तो वो कानों की लो तक यानी यहाँ तक ये उसको टच कर लें या इस बराबर तक अपने हाथ उठाकर फिर अल्लाह अकबर करके अपने हाथों को नाप के नीचे बांधेंगे, लेकिन खवातीन उनके लिए जो हुक्म है कि वो कंधों तक अपने लें हाथ और फिर वो नाप के नीचे नहीं बल्कि अपने सीने पर उनको हाथों को बांधेंगी। इसी तरह जब रुकू का मामला आता है तो मर्दों के लिए कि वो बाकायदा रुकू इस तरह करें कि उनके घुटनों तक हाथ तो पहुँचे लेकिन उनकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, लेकिन ख्वातीन के लिए कि उनकी कमर में कुछ खम रहे और वो इतने अपने हाथ बढ़ाएं कि उनके हाथ घुटनों तक पहुँच जाएँ। ये भी औरतों के नमाज के अंदर एक फ़र्क बयान किया। इस तरह जब आगे सजदे का मामला आता है तो मर्द के लिए है कि वो बिल्कुल अपने आप को अच्छी तरह कुशादा फैल कर सजदा करे, मतलब उसकी ये कोहनियाँ ये उसके जिस्म के साथ बिल्कुल ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कोहनियाँ ना ही ज़मीन पर लगनी चाहिए। जो कोहनियाँ बिल्कुल ज़मीन पर बिछा कर नमाज पढ़ते हैं ना तो ये मकरूह तहरीमी अमल होता है उनका। तो कोहनी ये पूरा जैसे बिल्कुल अपने आप को निढाल करके ज़मीन पर गिरा दी और ये सारी लग रही इनकी इजाज़त नहीं है, बल्कि कोहनी आपकी उठी हुई होनी चाहिए। हाँ आप जमात में शामिल हैं तो फिर साथ वाले की रियायत करें, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इतना कुशादा करें कि वो भी तकलीफ़ में आ रहा हो, तो फिर आप थोड़ा सा कोहनी समेट लें लेकिन ज़मीन पर इसको बिछाना नहीं है सजदे के अंदर। तो मर्द को इस हालत में सजदा करना है, लेकिन ख्वातीन के लिए कि वो अपने आप को जितना समेट सकें इसके अंदर कि अपने जिस्म को रान को ये आपस में मिल जाएं और फिर सजदा इस तरह करें कि पीछे उनके जो पांव वगैरह हैं तो वो चाहे आप पीछे की तरफ निकले हों या सीधी तरफ निकले हों इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शरीयत मुताहरा ने औरतों की नमाज के अंदर भी पर्दे की इस कदर रियायत का वो एहतमाम किया है कि ये रुकन इस तरह अदा करें कि इनके आज़ा और ये पर्दे की कैफियत ये सारी जो है वो इनका भी तहफ़्फ़ुज़ रहे। कफील भाई क्या कहते हैं नमाज के अंदर ये ख़वातीन के ऐसा एक पैगाम है और दर्स है तो अहम हालात कैफियत में
नमाज और दीगर भी जो इबादत हैं अगर आप देखें चाहे वो हज की इबादत है उमरे की इबादत है सब चीज़ों के अंदर पर्दे को सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत दी गई क्योंकि औरत जो है वो अपने अल्फाज के साथ ही इस बात का ऐलान कर रही है कि वो छुपाने की चीज़ है। तो लिहाजा जब इबादत के अंदर उसके पर्दे का इस कदर एहतमाम किया गया तो आम जो है वो हालात और मामलात के अंदर उसे किस कदर जो है वो एहतमाम करना चाहिए पर्दे का इस बात को खुद जो है वो पेश नज़र रखना चाहिए। मज़ीद ये कि ये जो पर्दे के जो भी अहकाम नमाज में फ़र्क भी आपको बयान किया गया ये ऐसा नहीं है कि जो है वो ये बात वैसे ही बयान की जा रही है बल्कि ये अहादीस तय्यबा से ही ये फ़र्क जो है वो साबित है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने ये जो है वो चीज़ें मालूम की उसी के मुताबिक जो है वो आगे बयान फरमाएं। तो इस हवाले से कई लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं या दूसरों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि भाई नहीं जनाब फ़र्क नहीं है, या बस अवकात वो रिवायात जो कि औरतों से मुतालिक हैं वो मर्दों के अतबार से उसे जो है वो अदा कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से मैं कहूँगा कि अगर आप तफसील जानना चाहें तो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की वेबसाइट के ऊपर तफसीली फतवा मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क अहादीस तय्यबा के साथ
जी हाँ बिल्कुल
उसकी रोशनी में ये मौजूद है तो आप वहाँ से भी जो है वो तफसीली फतवा देख सकते हैं।
माशाल्लाह आपने हज उमरे की बात की तो सफ़ा मरवा देखें
जी
बेसिक उसकी इब्तिदा एक औरत से है
जी
यानी बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला वो खुद अपने बेटे के लिए कभी दौड़ती थी और वो खास वो जगह मेलैन अख्तरैन जो है
जी
तो वहाँ पर जो दौड़ना वो इब्तिदा तो औरतों के लिए लेकिन अब उसको आगे रखा किन के लिए गया मर्दों के लिए रखा गया मर्दों के लिए रखा गया कि वो जो दौड़ी थी उस वक्त तो वो एक जरूरत के पेशे नजर और वो था भी उस वक्त
मजबूरी थी हालत
और जंगल बयाबान है बिल्कुल
कोई नहीं था
उस वक्त अपने बेटे की उस मोहब्बत में भी और साथ पानी को तलाश करने में भी। लेकिन आज के दौर में बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही फिर मर्दों को कहा कि वो दौड़ें औरतें नहीं औरतें वहाँ पर भी इस तरह दौड़ना नहीं बल्कि उनको नॉर्मल अंदाज से चलना है। मर्द के लिए सुन्नत कहा गया कि वो खास जो जगह है उस पर वो दौड़ कर जो है वो कुछ सही के जो बारे में कहा गया कि वहाँ पर कुछ दौड़ लगाएं ये उसके लिए सुन्नत करार दिया गया। अच्छा सफ़ा मरवा में मैंने एक कफ़ीर साहब देखा तो दो तीन अफराद गालिबन ऐसे हमने देखे कि उन्होंने दौड़ लगा दी कहाँ से सफ़ा से मरवा और मरवा से अच्छा मैं कहीं यार इनको पकड़ना है इनको लगे बंदो ये क्या कर रहे हो आप लोग यानी वो बीच वाला टुकड़ा है ना हालांकि वहाँ लाइटें भी लगी हुई हैं ग्रीन है वहाँ पे और पहचान भी है और तो वो दौड़ रहे हैं इधर सफ़ा से शुरू किया और मरवा और मरवा से सफ़ा मैंने कहा चले किसी चक्कर में इनको पकड़ते हैं लग तो जाएंगे। खैर हमारे तो शायद दो हुए थे, तो वो अपने तीन चार कर चुके थे और ठीक ठाक। और दौड़ना भी कमाल वाला दौड़, में कोई खेल के मैदान में या कोई ऐसे ना, हाँ दौड़ना भी तो इस अंदाज से चाहिए कि
पुरवकार अंदाज,
पुरवकार अंदाज हो, एक बतौर इबादत की लज्जत लेते हुए ना, या कि नहीं कि आप किसी के पीछे दौड़ लगाए हुए। उनको तो हमने देखा, यानी ये ऊपर वाली जो चादर है ना, ये तो उन्होंने वैसे ही करके ना पटका जैसे बांधते ना, कोई ऐसा कर लिया कि भाई पटका मान ले, और नीचे तहमत अपनी मजबूत और खूब दौड़े जा रहे। मैं भाई इधर से उधर से इधर मिल गया, मैं एक एक चक्कर में ना या आखिर में उस तरफ वो बस से कराज लग रहा था, उनको रोक लिया। तो मैंने साथ वाले किसी और को कहा कि आप, क्योंकि उनको रोकना भी तो स्पीड में ही थे, पता नहीं सांस भी नहीं लेना उनको, तो उनको रोका, भाई बात सुनो ये दौड़ना यूं नहीं है, इसका यूं यूं है और वहां से ये दौड़ना है। बोला ये क्या बात हुई, आज तक हमने दौड़ना ही सुना यहाँ का, हमने तो पाकिस्तान से या पतन किस शहर मुल्क से आए थे गल मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला वहां से सब कहते हैं दौड़ना है यहाँ पे और तुम कह रहे हो दौड़ना नहीं है, उन्होंने ये बात भी नहीं उसकी सुनी, फिर दौड़ने लग जाएंगे वो, फिर दौड़ते हुए पता नहीं उन्होंने सात चक्कर ही अपने दौड़ते दौड़ते पूरे किए। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, और ये अहकामात मौजूद हैं। रमल भी तवाफ के अंदर जो किया जाता है कि जिसमें अगर आप वो, उसमें भी गुंजाइश है कि गुंजाइश अगर है वाकई ऐसी है, ऐसा नहीं है कि पूरे हर तरफ रश लगा हुआ है और आप अपना उस तरह उछल कूद करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मौलानिया ने भी कई बार अपने मदनी मुज़ाकरों में इसकी तरबियत फरमाई है और फरमाया मैंने लोगों को भी बहुत उछल कूद करते हुए, यानी वहाँ पर भी वो समझते हैं कि शायद वो तीन चक्कर जो इब्तदाई हैं उनमें यही करना है, यही अमल करना है। तो जब हम दुरुस्त सीख कर जाएंगे तो फिर इस तरह की अगलात भी नहीं होगी। मजीद सवाल।
मैं चिकन का काम करता हूँ और मुझे नमाज पढ़नी होती है, लेकिन मेरे कपड़ों पे मेरे जिस्म पे गलाजत वगैरह लग जाती है, जिस वजह से मेरे को नमाज पढ़ने में परेशानी हो जाती है, तो मुझे बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब दे दें।
जी
देखिए, नमाज आपने पढ़नी है, पांच वक्त की नमाज जो है वो हर मुसलमान पर फर्ज है, तो उसे कारोबार की वजह से किसी भी वजह से आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपका कारोबार ऐसा है कि जिसके अंदर आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं या आपके जिस्म पर जो है वो नजासत लग जाती है, तो आप पर ज़रूरी है कि आप एक अलग-अलग साफ़ सुथरा जो है वो लिबास रखें। और अमूमन होता ही है कि ऐसा काम करने वाले ऐसा नहीं है कि यही लिबास पहनकर घर जाते हैं, बल्कि उन्होंने घर आने जाने का लिबास अलग रखा हुआ होता है और दुकान में आके वो दुकान का जो है वो लिबास जो है वो अमूमन पहनते हैं। तो इसी तरह आप वो नमाज का लिबास अलग-अलग रखें, और आपके अगर बदन पर किसी जगह पर नजासत लगी है तो उसके लिए पूरा गुस्ल भी ज़रूरी नहीं है,
उसको धोना है,
उस जगह को जो है वो आप धो लें। अब अमूमन जो मुर्गी ज़बह करने वाले अफराद हैं तो मुर्गी का खून को इतना ज़्यादा नहीं होता जो मिसाल के तौर पर जो है वो गाय भैंस वगैरह का जो है वो होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाथों के ऊपर ही छींटे जो है वो आएंगे। और नापाक भी फ़कत यही जो है वो है, बहने वाला खून जो है वो नापाक है, बाकी इसके अलावा बदन में अंदर से जो खून निकला वो नापाक नहीं है। अलबत्ता नजासत वगैरह अगर पेट वगैरह से मुर्गी साफ करते हुए निकली तो वो यकीनन जो है वो नापाक होगी और कपड़े बदन को नापाक कर देगी। तो लिहाजा पाकी का एहतमाम करें और नमाज जो है वो लाजमी अदा करें, नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। यूं ही पाकी का भी एहतमाम इस तरह हो कि आपकी जो है वो बू भी बदन के अंदर या कपड़ों के अंदर ना पाई जाए, क्योंकि अगर बू बदन या कपड़ों में पाई जाएगी तो बू के साथ मस्जिद में जाना या इवन नमाज पढ़ना इनफरादी तौर पर वो भी जो है वो जायज़ नहीं है। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना बहरहाल बेहद ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे कि जो है ना हमें अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला है और उसने बुलाया है, तो अब क्या अंदाज होगा। इसको आप आसान अल्फाज के अंदर मैं कहूँ तो यूं ही समझ लें कि आप जिस दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ सेठ ये कहता है कि जो है वो पाँच टाइम तुमने इस काम को छोड़कर साफ सुथरी हालत में मेरे ऑफिस में आना है, और उसका ऑफिस जो है वो आपको दिख रहा है बड़ा साफ सुथरा जो है वो, उसमें आप ऐसे कपड़ों के साथ जा नहीं सकते और उसकी तरफ से पाबंदी भी है कि नहीं भाई साफ सुथरे कपड़ों के अंदर ही पाक साफ होकर तुमने मेरे पास आना है, तो तुम्हें इन पांच दफा की ड्यूटी के बाद आखिर के अंदर तुम्हें उस दिन की तनख्वाह मिलेगी। देखें कि हम किस कदर जो है वो एहतमाम जो है वो करते हैं। तो अब ये हमारा दुनियावी जो है वो सेठ से तनख्वाह लेने के मामले के अंदर हम ये सारी बातें बर्दाश्त करने को तैयार होते हैं, हालांकि दुनियावी जो सेठ है वो तनख्वाह देने का किस कदर मजाज है। वो तो एक ज़ाहिरी सबब है, हकीकी रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है। तो जब अल्लाह पाक और न सिर्फ रिस्क देने वाली, हमें सांसें देने वाली, हमें शिफा देने वाली, हर किस्म की नेमतें हमें देने वाली ज़ात वो रब की है, तो अगर वो हमें पांच वक्त जो है वो अपनी तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, तो हमें फौरन जो है वो तमाम चीज़ों से फारिग होकर, पाक साफ होकर, बू से अपने आप को दूर करके नमाज के लिए हाजिर होना चाहिए। तो यूँ एहतमाम करेंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में मुश्किल होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसान हो जाए।
ये माशाल्लाह कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। बैरून मुल्क से एक सवाल है और ओवरऑल सवाल सब बहनों के लिए कि एहराम की हालत में ख़वातीन का चेहरा जो छुपाना है, जाहिर करना है, या तो इन्होंने छुपाना लिखा है कि एहराम की हालत में वो छुपाना है या क्या करना है, और सरबंद यानी स्काफ से पहले भी कह रहे हैं कि कोई सर पर कोई चीज़ बांध कर फिर स्काफ वगैरह लेना, तो ये थोड़ी सी डिटेल बता दें कि चेहरे का और इसको फिर कैसे कवर करेंगे।
चेहरा छुपाना नहीं बल्कि चेहरा जो है वो जाहिर करना हालत एहराम में औरत पर वाजिब है। आम हालात के अंदर चेहरा छुपाने का हुक्म है औरत को, लेकिन एहराम की हालत के अंदर औरत के लिए ये हुक्म है कि वो जो है वो चेहरा जाहिर रखेगी। अच्छा, चेहरे से मुराद क्या है? चेहरे से मुराद पेशानी के जहाँ अमूमन बाल उगते हैं वहाँ से लेके थोड़ी तक, और यहाँ एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक, ये जो है वो चेहरा है। तो लिहाजा इस पर
बात से ये और
हाँ, ये जो है वो औरत जो है वो जाहिर करेगी हालत एहराम में। अब जो सरबंद बांधती हैं या स्कॉफ पहनती हैं तो वो इससे ऊपर ही बांधे, सरबंद सर पे ही बांधा जाता है, तो लिहाजा आप ऊपर ही जो है वो बांधिए। उससे अगर आप पेशानी का कुछ हिस्सा छुपा लेते हैं या स्कॉफ से आप पेशानी का कुछ हिस्सा छुपा लेते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है। बाज़ सूरतों में सदके का हुक्म लगेगा, बाज़ सूरतों में दम भी लाजिम हो सकता है, तो लिहाजा एहतियात कीजिए। हालत एहराम के अंदर आप अपने सरबंद को अपने फकत बालों पर ही रखिए, पेशानी उसके ज़रिए से ना छुपे, इस बात का ख़ास एहतमाम करें।
और ये ठोड़ी का भी आपने जो बताया है, ये इसका भी बाद औकात बहनें यूं ही करती हैं कि भाई पूरा बस ठीक है यहाँ तक लिया, अब ये पूरा नीचे के जो ये गाल के हिस्से हैं ये सब जाहिर हो रहे होते हैं, तो इनको कोई ऐसे अंदाज से लेना है कि ये थोड़ी तक ये
थोड़ी तक हो, इसके नीचे जो बदन है वो जो है वो जाहिर ना हो,
वो ना हो। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल भी इसी तरह का ही है कि इस्लामी बहनें एहराम की नियत के बाद क्या जूड़ा बांध सकती हैं, क्योंकि जूड़ा बांधने में उमूमन कुछ ना कुछ बाल टूट जाते हैं, क्या करना चाहिए?
जूड़ा बांधना तो जायज़ है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो है वो आप के बाल जो है वो जुदा ना हो। पता है कि आप कंघी करेंगी तो बाल जो है वो टूटेंगे,
ठीक
ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि बालों को जुदा करना ये जो है वो जायज़ नहीं है, और उसके अंदर तादाद के एतबार से बाज़ सूरतों में सदका और बाज़ सूरतों में दम लाजिम होता है, तो लिहाजा एहराम की नियत से पहले ही जो है वो इन तमाम चीज़ों का एहतमाम कर लीजिए।
ठीक है, तीसरा सवाल भी इसी एहराम से मुतालिक है कि इस्लामी बहनें जो उनका अबाया वगैरह है, कि एहराम हो गया, एहराम की नियत हो गई, तो अब जो भी उस वक्त कपड़े वगैरह पहने हुए थे इसको तब्दील करना, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या कुछ?
कपड़े तब्दील करना या मर्दों के लिए एहराम की चादर तब्दील करना, इसमें कोई हरज नहीं है। लोग ये समझते हैं कि एहराम इन कपड़ों का नाम है, ऐसा नहीं है। एहराम तो वो नियत है और उस नियत की वजह से आप पर लाजिम होने वाली पाबंदियाँ हैं, तो लिहाजा आप मुकम्मल कपड़े उतार कर नहा भी सकते हैं और आप कपड़े तब्दील भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो ख्वातीन भी जिन कपड़ों में एहराम की नियत की उसे तब्दील कर सकती हैं, स्कॉफ तब्दील कर सकती हैं, इसी तरीके से मर्द भी अपनी वो एहराम की चादरें तब्दील कर सकता है, उससे कोई एहराम पर फर्क नहीं पड़ेगा।
बहुत से लोग परेशान हुए थे, हालांकि बाज़ औक़ात नापाकी लग जाती
जी,
बाहर लग गया या कोई कीचड़ लग गया, वैसे ही एहराम बज़ाहिर भले कोई नापाक चीज नहीं लगी लेकिन पाक ही लग गई, लेकिन है उस तरह। मिसाल के तौर पे आप खाना ही खा रहे हैं, सालन गिर गया आपके, अब एहराम पूरा खराब हो गया, यानी निशान धब्बे, अब इस तरह तो मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो लोग घबरा रहे होते हैं कि यार इसको हम धोएंगे, ये तो उतर गया हमारा, आप जो दूसरा ये
जी,
तो कोई मसला नहीं, आप उसको उतार लें, और अगर नापाक हो चुका है तो फिर जाहिर है उसको पाक करना वो जरूरी है, तो आप चेंज भी कर लेंगे, तो इसमें कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं। जहाँ तक नहाने का कहा, बिल्कुल नहा भी सकते। अच्छा, नहाने में फिर इनको इस अंदाज से कि बाल वगैरह ना टूटे,
साबुन और जो है वो मैल वगैरह छुड़ाने के लिए नहाना ना हो, सिर्फ ये है कि गर्मी की वजह से जो है वो नहा रहे हैं या नजासत लग गई है बदन पर, उस हिस्से को जो है वो धो रहे हैं, तो इस एतबार से नहा सकते हैं। इस तरह नहाना कि जनाब जो है वो आप बालों में जो है वो साबुन शैम्पू भी करने लग जाए और आपको पता है कि बाल भी जो है वो टूटने हैं, टूटते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
दौरान तवाफ अगर किसी का वजू टूट जाता है तो फिर वहाँ से वहीं से तवाफ शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा था, तो इसका भी तरीकेकार मुफ्ती साहब बता दीजिए और सही करने का तरीका भी बता दीजिए। अगर सफा से स्टार्ट करते हैं तो 7 चक्कर तो सफा पे ही खत्म होने चाहिए या फिर मरवा पे भी खत्म हो सकते हैं?
जी सफा पे तो ख़त्म करेंगे तो फिर आप वो 8 हो जाएंगे, यानी आप इधर से शुरू कर रहे हैं तो उधर गए 1 चक्कर, वहाँ से वापसी आ पाए तो 2 हुए, ठीक है, और फिर आप सफा से जब दोबारा मरवा की तरफ गए तो ये 3 और वहाँ से इधर आए 4, फिर आप इधर गए 5 और इधर आए 6, अब आप जब वापसी जाएंगे तो वो 7 वहाँ ख़त्म। अब आप वहाँ ख़त्म अपनी दुआ वगैरह कीजिए और आपकी सही मुकम्मल होगी। वापसी अगर आप उसी तरफ ही आएंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको ये 8 चक्कर हो जाएंगे, तो 8 नहीं है 7 ही चक्कर है। और बाद दोनों आने जाने को शुमार कर रहे होते हैं, आना जाना ये कोई ये इस तरह नहीं है, बल्कि आप एक तरफ गए तो ये 1 चक्कर और उधर से आप इस तरफ आए तो ये दूसरा है। अगर आने जाने को ही पूरा शुमार करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो बेचारे अपनी इस गलती की वजह से आना जाना ही शुमार करके अपने आप को भी थकन में डाला, साथ जो लोग थे उनको भी थकावट में मुब्तला किया है। तो ये एक से दूसरी सब जब जाएंगे तो 1 चक्कर आपका मुकम्मल हुआ। तो मुख्तसर ये कि सफ़ा से शुरू होगी तो मरवा पर आपकी सही ये मुकम्मल होगी, यानी 7वां चक्कर वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी कफी साहब,
बेवजू जो है वो तवाफ़ करना ये जायज़ नहीं है, लिहाजा जब वज़ू आपका टूट गया तो आप वहीं से जो है वो चले जाएँगे वज़ू करने के लिए, और वज़ू करके वापस आकर अगर आपके 4 चक्कर हो चुके हैं तो आप वहीं से जो है वो कंटिन्यू करें जहां से जो है वो आपने तवाफ़ छोड़ा था, और अगर इससे कम चक्कर हुए थे तो अब इख्तियार है कि या तो आप जो है वो दोबारा नए सिरे से करें या जो है वो यहीं से कंटिन्यू करके बकिया जो वो चक्कर हैं वो पूरे कर लें।
ठीक है, और अगर कोई ये सवाल इधर भी एक SMS की सूरत में आया हुआ है कि बाद औकात 8 चक्कर भूल कर तवाफ़ के हो जाते हैं तो आप क्या करें?
8 7 चक्कर
तो मुकम्मल कंप्लीट होने पर
तो जो है वो मुकम्मल हो गया एतिकाफ़, पसदन अगर जो है वो शुरू किया तो फिर इसको जो है वो मुकम्मल जो है वो
नया तवाफ़
जो है वो करना होगा।
ठीक है, यानी हर तवाफ़ 7 चक्कर
ही जो है वो है।
ठीक है, नफली तवाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शायद होता है कि मुतलकन तवाफ ही है, यानी कहाँ से शुरू किया, कब है, कैसे, बस जितने हो सके आप करते जाएं, तो जो भी तवाफ है वो 7 चक्कर।
हाँ, वो खत्म यानी 7 पर ही होगा, 7 के बाद फिर आप जो है वो
एक नया तवाफ
नियत के साथ जो है वो नया जो है वो तवाफ जो है वो आप जो है वो आगाज करें,
यानी इसको यूं समझ सकते हैं कि कम अज कम नफिल नमाज 2 रकतें।
जी,
तो 1 रकत नहीं है, है?
जी, तवाफ जो है वो चाहे नफिल हो चाहे फर्ज हो चाहे वाजिब हो, जो भी है वो 7 के ऊपर ही जो है वो एक तवाफ ही मुकम्मल 7 पर ही हो।
ठीक है, तो नफली तवाफ के बाद भी 2 रकत वो अदा करना?
जी बिल्कुल, वो भी जो है वो वाजिब है। अलबत्ता उसमें ये इख्तियार है कि अगर कोई चाहता है कि मैं 2-4 जो है वो तवाफ कर लूँ और 1 साथ फिर कर लूँ तो यूँ भी जो है वो कर सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि 2 तवाफ़ करे, 2 रकात नफिल पढ़े, फिर तवाफ़ करे, फिर 2 रकात नफिल करे। हाँ, मकरू वक्त वगैरह बीच में आ गया उस एतबार से वो जो है वो उस वक्त नहीं करता तो ठीक है, तवाफ़ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
मकरू वक्त जो नमाज के लिए मकरू या नवाफिल के लिए जो मकरू होते हैं,
जो है वो नमाज के लिए जो है वो मकरू औकात हैं, जैसे सूरज तुलू होने के बाद 20 मिनट बाद वाला, ज़ाहवाए कुबरा वाला, और जो है वो ये ग़ुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले वाला।
ठीक जी, सवाल।
इस्लामी बहन का एहराम की नियत करने के बाद अगर होटल जाकर अबाया उतार दिया और स्कार्फ पहना रहा, क्या उसमें एहराम की खिलाफ वर्जी होगी या नहीं? और एहराम की तारीफ बता दीजिए इस्लामी बहनों की कि अबाया उनका एहराम है या फिर जो अंदर अबाये के जो अंदर सिले हुए कपड़े पहने वो उनका एहराम है। क्या एहराम की नियत के बाद इस्लामी बहने दस्ताने और जुराबे पहन सकती है? अगर दस्तानों पे खुशबू लग जाए, दस्ताने भी क्या इनाम की पाबंदियों में आएंगे या नहीं? अगर दस्तानों में खुशबू लग जाती है तो इस पे بھی دم لازم ہوگا؟
کمال ہے، احرام کے، عمرے کے، کتنے سوالات، یہی دارالتا کے سلسلے کا حسن ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی دلچسپی بھی ہے. جو موضوع شروع ہوتا ہے تو کتنے سوالات کے انبار لگ جاتے ہیں، اور اسی ٹاپک سے ہی متعلق وہ سوالات بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک بار بار یہ حاضریاں بھی عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں یعنی اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہے، اوپر والا بایا ہے یا جو کپڑے پہنے ہوئے وہ ہیں؟
اسلامی بہنوں کے لیے وہ، جیسے میں نے کہا کہ احرام تو در حقیقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے وہ نیت ہے، تلبیہ ہے، جس سے احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی. اب احرام کی پابندی یہ ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، تو لہٰذا وہ دو چادریں جو ہے وہ پہن لیتا ہے، ایک اوپر اور ایک تہبند کے طور پر. عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے جو اپنے کپڑے ہیں وہ نارمل وہ پہن سکتی ہے. تو اس کا جو احرام ہے نہ اس کے کپڑوں میں ہے نہ عبایا میں، تو اسی لیے وہ عبایا بھی اتار سکتی ہے، اور کپڑے اگر تبدیل کرنا چاہے تو کپڑے بھی جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر عورت نے عبایا پہن کر احرام باندھا اور ہوٹل میں جا کر وہ عبایا جو ہے وہ اتار دیتی ہے اور نارمل کپڑوں کے اندر وہ طواف کرتی ہے یا دوسرا عبایا پہن لیتی ہے، تو اس سے اس کے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا. البتہ عمومی طور پر خواتین کے لباس جو ہے وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ جب وہاں اس مقدس مقام پر بھی جا رہی ہے تو یا تو سادہ بالکل لباس ہو،
ٹھیک،
وہ سفید ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی سا بھی لباس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی دوسرا لباس ہے کہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے غیر محرم مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، تو پھر اس کو عبایا پہن لینا چاہیے تاکہ عبایا جو ہے وہ تمام اندر کے جو ہے وہ لباس اور اس کے جو بھی رنگ وغیرہ ہیں ان کو چھپانے کا کام جو ہے وہ دیتا ہے. تو یوں عورت کی طرف نگاہیں جو ہے وہ جو مردوں کی اٹھنے والی ہوتی ہیں وہ گویا کہ کم ہو جاتی.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
غلام مصطفیٰ تاری ہے. حضور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دکاندار حضرات جو کپڑا اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں یا کسی کارخانے سے اٹھاتے ہیں، تو ہم یہ اٹھاتے ہیں میٹر جو کہ 39 انچ کا ہوتا ہے. اچھا، کسٹمر کو بیچ رہے ہیں ہم گز کے حساب سے، اور گز جو ہوتا ہے وہ 36 انچ کا ہوتا ہے، تو ان دونوں میں 3 انچ کا فرق ہوتا ہے، گز چھوٹا ہے اور میٹر جو ہے بڑا ہے. کپڑا اٹھاتے ہم میٹر سے ہی ہیں. اگر کوئی ہمارے کو کہتا ہے گز سے تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں کپڑا، لیکن یہاں کسٹمر کو گز کہہ کے بیچ رہے ہیں، تو ہمارا ایسا کرنا کیسا؟
میٹر گز کا تو شاید انہوں نے آج بتایا ہے، یہ نہیں عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ لینے بھی جاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو کیا کہیں گے؟
بتا کر بیچتے ہیں کہ میں گز کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انہوں نے میٹر کے حساب سے اٹھایا ہو یا کلو کے حساب سے اٹھایا ہو یا کسی بھی اپنے وزن کے اعتبار سے اٹھایا ہو. تو جب یہ سامنے والے کو بتا کر بیچ رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنے گز کا جو ہے وہ، اتنے روپے کا، اتنے جو ہے وہ پر گز دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میٹر میں اٹھایا ہے تو آپ میٹر میں ہی آگے جو ہے وہ بیچیں. ہاں، اس میں جھوٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ یہ کہا کہ بھائی یہ ایک سوٹ تو جو ہے نا مجھے اتنے کا بھی نہیں پڑتا، یا ایک میٹر، ایک گز جو ہے وہ مجھے اتنے کا نہیں پڑتا، حالانکہ در حقیقت جو ہے وہ ان کو اتنے کا پڑ رہا ہو میٹر کے فرق کے اعتبار سے، تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یا کوئی کسٹمر ہی کہتا ہے کہ بھائی میٹر کے اندر ہمیں چاہیے، اور ابھی آگے سے کہ نہیں بھائی میٹر میں تو ہمیں نہیں ملتا، تو اب یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے وہ آپ نے کسی بھی کیفیت کے اندر کپڑا اٹھایا ہو، کسی بھی میجرمنٹ کے اعتبار سے آپ نے اٹھایا ہو، تھان کے حساب سے اٹھایا ہو، تو آپ انہیں کلو کے اعتبار سے اٹھایا ہو، کیونکہ بعض کپڑے کے وزن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بکتے ہیں، تو آپ سامنے والے کو اپنی میجرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں.
کئی چیزوں کے اندر نا اس کی مقدار کو کم کر دیا جاتا ہے، یعنی ابھی ہم حالیہ مہنگائی دیکھیں تو چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا یہ پہلے 4 بسکٹ تھے اب 3 مل رہے ہیں اس پیکٹ میں، یہ اتنی ٹافیاں نکلتی تھی اب اتنی ٹافیاں، اب یہ چیز کم کر دی گئی. اچھا، اسی طرح اور بھی جو بالکل پیکٹوں کی صورت میں آتی ہیں بالکل، تو ان میں بھی اوپر لکھ دیا بظاہر کہ اتنے گرام ہے، لیکن ایک جو اس کا معروف ہے اور یہ سب چیزیں، تو کئی چیزیں یہ دھوکے میں نہیں آتی ہیں؟ بچہ بتانا چاہیے کیا کرنا ہے.
یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ مقدار کے اندر ہی فرق کر دینا. انہوں نے کہا نا کہ گز جو ہے وہ 36 انچ کا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ گز ہی 35 انچ کا ہو چکا.
اچھا،
اور یہ
یعنی گز کو یہ اور کر،
अच्छा, ये ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूँ कि है नहीं, यानी लीटर्स में जो माप के अंदर जो लीटर्स होते हैं दूध वाले, ये तो 100% हमारे यहाँ कराची में तो तकरीबन, समझे आप, तकरीबन 100% तो मैं खैर नहीं कहूँगा, चेंज ही हो चुके हैं, क्योंकि वो 1000 ml का होता है, एक जो लीटर होता है वो 1000 ml का होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल दिया जा रहा होता है, कहीं 950 ml है, कहीं 900 ml है, कहीं जो है वो 850 ml भी जो है वो दिया जा रहा होता है। इसी तरीके से ये जितनी भी चीज़ें जो है वो ये वाले माप वाले लीटर से जो है वो बेची जाती हैं, ऑयल हो गया, दीगर इस तरह की चीज़ें हो गई, तो अब उसके अंदर ये तो सीधा सीधा झूठ भी है, धोखा भी है, वज़न में कमी भी है,
कमी भी है।
तो ये जो वज़न की कमी है कि आप 1 लीटर बोल के बेच रहे हैं लेकिन वो 1 लीटर है ही नहीं, वो तो 950 ml है, 1000 ml होना चाहिए, तो ये वो वज़न की कमी है जो कि हराम है, जिसके ऊपर जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो है वो अजाब भी जो है वो इसी वजह से आया था, कि जो है अल्लाह ने उनको यही फरमाया था कि औफुल कैला वल मीज़ाना बिल क़िस्त, कि जो है वो माप तोल को पूरा करो,
पूरा करो।
और इस वक्त जो है वो हमारे मुआशरे में ये माप तोल की कमी जो है वो बड़ा फ़र्क।
अच्छा, हम जब इसको ओवरऑल बात करते हैं तो शायद लोग समझ लेते हैं कि फ्रूट वाले ने कमी की है, ठेले वाले ने कमी की, यानी बहुत उस तरह। पिछले दिनों एक आदमी से मुलाकात हुई कफिल साहब, तो बल्कि वो मुझसे पूछने आए थे, कैटरिंग का काम था उनका, खाने बगाने और ये वो सब, तो मैं छोड़ दिया क्योंकि अब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कभी आपने वो काम क्यों छोड़ दिया, तो फिर वो भी अपनी कोई ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि अब ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता, हम खाना बुक करते हैं सब कुछ, हम उनसे अफराद पूछ लेते हैं और ये सारा कुछ पूछ लिया, और वो अंदाजे से ज़्यादा ही बता रहे होते हैं कि इतना खाना हो हमारी इज्जत महफूज रहे, ठीक है, तो इनको पता है ये अंदाजे से ज़्यादा ही बता रहे हैं, तो हम इनका खाना बुक कर लेते हैं और हर डे के अंदर 2-2 किलो का वो फ़र्क डालते डालते ये सारी चीज़ों में हमने अपनी बजट वो ज़्यादा निकाल ली, और खाना उनको कह देते हैं पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। कैटरिंग वाले आमतौर पे जाते हैं तो बड़े चलाकी पता क्या करते हैं, जाएंगे और जाके सबसे पहले इन में ऐसे बंदे हैं वो हॉल में कुर्सियाँ गिन लेंगे या टेबलें गिन लेंगे, एक टेबल पर बिलफट 5 अफराद बैठे हैं, 10 अफराद बैठे हैं, तो सारे टेबल गिने और उनको पहले से ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे पार्टी को, यार आपने हमें 300 कहे थे, ये टेबल इतने लगे हैं और इतने, तो अफराद तो इतने, खाना कम हुआ तो हमें नहीं पूछिएगा, मतलब उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पे प्रेशर दे दिया। अब वो देने के बाद कह रहे जब शुरू करते हैं तो फिर हमारे इसमें अंदाज भी मुख्तलिफ हैं कि हमने कहीं इधर कुछ किया फिर भूल गए दूसरी टेबलों को ये वो, जहाँ तो वो जिन्होंने एहतमाम किया यार वहाँ पहुँचाओ तो फौरन गए, दूसरी जगह इंतजार करते रहे, तो ये खींचा तान के करके पूरा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको वो कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, और जहाँ अफराद ही ज्यादा हैं तो वो मालिक पहले ही परेशान होते हैं, वो हमारी मिन्नतें कर रहे होते हैं यार पूरा कर दो यार किसी तरह ये कर दो, तो कह रहे हैं कि इस कदर यानी इस काम के अंदर भी ये दाखिल है कि अब हम क्या करें, तो जो खौफ खुदा वाले होते हैं वो तो बेचारे परेशान ही होते हैं कि हम क्या डील कर रहे हैं और ये वो, तो ये जो कमी बेशी वाला मामला, इसका मतलब हर जगह ये नहीं,
सब जगह में ये असल में वही लोग सोचते होंगे हमें कैसे पता, हमें ऐसे ही पता होता है कि कुछ खौफ खुदा रखने वाले होते हैं, कुछ आपके पास आया वो हमारे पास भी आया। अच्छा, ये हर इंडस्ट्री से मुताल्लिक हमारे पास लोग आते हैं और मसला पूछते हैं कि सब ये हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि वाकई यार ये हमने कौन सा घर पे जो है वो दूध को कभी मापा है कि वो 950 या वो बताने वाले नहीं जो है वो बताया है। और फिर जैसे मैंने, मुझे एक मरतबा याद है कि मैंने एक मरतबा दूध वाले से पूछा था तो उसने मुझे कहा कि हाँ नहीं ये 900 ही होता है, 1000 वाला तो दौड़ गया। तो भाई ये कितनों को पता है, बहुत कम लोगों को इस बात का जो है वो पता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से वजन के अंदर यानी ये माप में वजन में भी के जैसे पाव जो है वो 250 ग्राम होता है लेकिन वो 225 ग्राम जो है वो चला रहे होते हैं, 225 ग्राम 230 ग्राम की चीज जो है वो दे रहे होते हैं। यूं कई जगह के ऊपर जो है वो मुआशरे में माप में नाप तोल में कमी पाई जाती है। इसी तरह एक गज वाला इसके अंदर भी कि ये यानी हम बसा औकात कई दफा ना बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं भाई ये चीज हमारे जमाने में आती थी तो वो थैली में ही पता चल रही होती थी कि ये इतनी और अब ये इतनी सी आ रही है। तो वो दर हकीकत यही सारी सूरत हाल है कि वो कमी करते 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 आज वो चीजें जो है वो बेवकत सी जो है वो होकर जो है वो रह गई है। तो लिहाजा इस चीज़ को पर हर फर्द को जो जो जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है ये ज़रूरी है कि अगर आप ये कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ से ये चीज़ हमें मिली नहीं रही, मार्केट के अंदर ही ये गज़ जो है वो ये ख़त्म हो गया, ये 36 इंच का नहीं होता, यही 34 इंच का, तो फिर आप कस्टमर पर इस बात को वाजे करें। वाजे आप कर देंगे तो ठीक है, फिर ऐसी सूरत के अंदर आप पर कोई गुनाह जो है वो नहीं है कि जनाब हमारा गज़ जो है वो 34 इंच का है,
ठीक
ٹھیک ہے، ہمارا لیٹر جو ہے وہ 950 جو ہے وہ ملی لیٹر کا ہم جو ہے وہ دے رہے ہیں.
صحیح، اور اس کو بتا بھی دیں کہ اس سے تمہارا بنے گا نہیں سوٹ.
ہاں
لے بھی گیا، اس کو تسلی بھی دے دی، اب ٹیلر کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کپڑا
ہی کم ہے، یہ بھی جو ہے وہ معاملہ ہے. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری.
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن اس میں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں ہم تقریباً 25 سے 30 شرعی مسائل مختلف سوالات کی صورت میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو سیکھا مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. الحمدللہ اس سلسلے کا حسن یہی ہے، عبادات کے سوالات ہوں، تجارتی معاملات کے سوالات ہوں، عام اخلاقیات گھر کے حوالے سے، شادی بیاہ، دیگر رسومات، تو مختلف انداز سے سوالات وہ اس پروگرام میں آتے ہیں اور ان کے جوابات ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے، آمین.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.